तब चलिए पहले पेज पे जहाँ से ये बुक बाकायदा शुरू होती है, पेज 20 है। पहला टॉपिक क्या है? फर्जियत हज से मुतल्लिक आसानियाँ। आपके और मेरे जहन में सबसे पहला ये सवाल होना चाहिए कि हज किस पे फ़र्ज़ है और किस पे नहीं है। अब अगर अल्लाह ताला एक जुमला कह देते हर बंदे पे फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ हो जाना था ना। आपने वो हदीस सुनी होगी कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल ही सवाल पूछी जा रहा है, तो उसमें इसने ये भी सवाल किया था अल्लाह के नबी, हज फ़र्ज़ है, फिर क्या हर साल फ़र्ज़ है? आप खामोश रहे, खामोश, वो पूछते ही जा रहा था। बाद में आपने कहा कि अगर मैं इसके पूछने पे हाँ कहता तो हज पूरी उम्मत पे फ़र्ज़ हो जाता और हर साल फ़र्ज़ रहता। हालांकि ऐसा नहीं है। हज फ़र्ज़ किस पे है, किस पे नहीं है, देखिएगा। नंबर एक, इस्तेतात के बग़ैर हज फ़र्ज़ नहीं है। इस्तेतात क्या होती है? तौन का लफ्ज़ है, खुशी के लिए आता है। और इस्तेतात का मतलब क्या होता है? कि वो काम जब खुशी से कर सकें। अगर आपकी इस्तेतात नहीं है तो अल्लाह ने आप पे हज फ़र्ज़ नहीं किया। अल्लाह ताला ने सिर्फ इन्हीं लोगों पर हज फ़र्ज़ किया जो इसकी इस्तेतात रखते हैं, और इस्तेतात में दर्जा ज़ैल बातें शामिल है। नंबर एक, अखराजाते सफ़र और सवारी या सवारी पर आने जाने का किराया मौजूद होना चाहिए। ज़ाहरी बात है, देखिए कि हज के लिए लोग दूर से भी आते हैं, करीब से भी आते हैं, तो सफ़र, टिकट, सवारी, फिर वहाँ जाने का रहना, ये सब चाहिए ना। तो अब ये कोई कहे कि जी मैं वहाँ जाके भीख मांग लूँगा, बस एक दफ़ा मुझे कोई पहुँचा दे, फ़र्ज़ नहीं है। ज़बरदस्ती कर करा के कोई किसी तरह जाता आता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह ने आप पे कोई बोझ नहीं रखा। लेकिन मैं अपने समेत आप सबको भी और वो सब लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से उठकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इधर उधर जाते हैं, उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम सब सऊदी अरब से गुजर के आते हैं। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान से तकरीबन 4 घंटे का सफ़र है सऊदी अरब का, ऑलमोस्ट, जद्दा अगर आप चले जाते हैं, आगे 4 या 3 और लगा लीजिए तो आप नॉर्वे आ जाते हैं। तो रास्ते में हम गुजर के जाते हैं, तो पहली चीज़ तो हम सब की है। यानी जो लोग भी नॉर्वे में या बाहर से सुन रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से नॉर्वे आ चुके हैं, आप यूके आ चुके हैं, आप अमेरिका, कनाडा आ चुके हैं, तो फिर आप डेफिनेटली सऊदी अरब का टिकट भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ चंद सेकंड के लिए सोचिए, कितने साल से हम बाहर के मुल्कों में आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, बीच में रास्ते में स्टॉप कर भी सकते हैं, लेकिन क्या अभी तक मैंने हज उमरा नहीं किया? मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी है, सुना भी है, और अभी तक हज के बारे में वो दिल में तड़प भी नहीं है। इतना आसान लेते हैं, नहीं 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 मैं नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी थी माशाल्लाह इस ट्रिप में जो जाना चाह रही थी, तड़प भी थी, तलब भी थी, लेकिन क्या इशू था? कहती हैं घर से मर्द नहीं साथ जा रहे, शौहर नहीं जा रहे। वो क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो कहते मुझे शुगर है, फिर मैं वहाँ बार बार वॉशरूम यूज़ करूँगा। इतनी छोटी सी मजबूरी है, आप जाके तो देखिए, वहाँ आपको पेशाब आएगा ही नहीं। लोग गवाहियाँ देते हैं, घर में 1 घंटे में दो दो बार जाने वाले वहाँ सारा सारा दिन हरम में बैठे रहते थे, तलब भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, जिसके घर जा रहे हैं क्या वो हमारे लिए आसानी नहीं करेगा? तो इसके लिए आपका मेरा इस वक्त फ़र्ज़ क्या है कि हम इस बात को आम करें। हमारे मिलने वाले दोस्त, रिश्तेदार, हमारी उनसे मोहब्बत ही है कि उनको बताएं कि अगर आप माली तौर पे मजबूत हैं तो आप हज करेंगे। इसमें फिर एक छोटी सी बात जो कहने की ज़रूरत है, लोग कहते हैं हम पे तो कर्ज़ है, चूँकि कर्ज़ है, और वो कर्ज़ कौन सा? खुद ही बता रहे थे कि जी घर का कर्ज़ है, गाड़ी का कर्ज़ है, तो फिर हज तो कर्ज़ हो तो फ़र्ज़ नहीं है। तो फिर अल्लाह ना करे कि अगली दफ़ा हम ज़कात भी लेने लग जाएंगे, क्योंकि जिसके सर पे कर्ज़ होता है वो तो ज़कात ले सकता है ना। पहले आप कर्ज़ ले लें, अपने ऊपर डाल लें कर्ज़ बड़ा सा, 3-4 मिलियन करोन का घर ले लिया, चलिए जी अब हज माफ़ करा लिया क्योंकि कर्ज़ है सर पे। तो जिसके ऊपर कर्ज़ हो उसको ज़कात लगती है, तो फिर अगले साल से क्या हम ज़कात भी लेंगे लोगों से? बात दिल को भी नहीं लगती ना। ये ख्वाहिशों के कर्ज हैं, कोई नहीं कहता हम अपने घरों के लिए कर्ज लें। ये वो कर्ज नहीं है जो अल्लाह ना करे किसी गरीब को लेना पड़ता है अपनी रोजी रोटी के लिए। तो हमेशा से अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखिए कि माली तौर पर मैं कर सकती हूँ। फिर इसका एक और मुतवक्का सवाल होता है, पैसे नहीं है हाथ में, कैश नहीं है। तो कैश नहीं है तो कोई बात नहीं है, जेवर है ना, उसको बेच के आप हज पे चले जाएं। ज़मीन का टुकड़ा पाकिस्तान में कोई रखा होगा ना, कोई विरसे में मिला कोई ज़मीन जायदाद, और बल्कि वो बाद में झगड़े ही पड़ने हैं, आप एक ज़मीन का टुकड़ा बेचिए, अपने बीवी बच्चों समेत जाकर हज कराइए। ये बात आम करने की ज़रूरत है। और अल्लाह की सुन्नत देखिए, जब बंदा किसी फ़र्ज़ को बार बार टालता रहता है ना पीछे पीछे, अल्लाह उसको पकड़ता है। फिर बीमारियां, मुकदमे, तकलीफें, औलादों का बिगड़ना और घरों का टूटना और बेसुकूनी, ये सारी सजाएं मिलती हैं। अगर हमारी चेकलिस्टें अपने बच्चे के पैदा होने के साथ ही बन चुकी हों, देखिए सबको पता है ना, 3 साल का बच्चा बढ़ने आगे जाता है, सबको पता है 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है, सबको पता है कि 12 साल का हो गया तो मैट्रिक कर लेगा, 14 का होगा तो विद्रेगोन जाएगा, सबको पता है ना ये बातें। और हम सबको अपने बच्चों के शनाख्ती कार्ड बनने की उम्र भी पता है, इनको कब ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, शादी कब कर सकते, दुनिया की लिस्टें बनी है ना। क्यों हमने अपने बच्चों के साथ एक लिस्ट नहीं बनाई कि इन्होंने नमाज कब शुरू करनी है, कब इनको नमाज की तरफ तवज्जो दिलानी है, किस दिन इनकी नमाज फ़र्ज हो जानी है, अब कब ये बालिग हो गए हैं, कब इनकी हया और इनके लिबास और पर्दे का ख्याल करना है और कब इन्होंने हज करना है। ये तो पैदा होते बच्चे के बर्थडे वाले दिन लिख लेने वाली बातें हैं कि इंशाल्लाह इस बच्चे ने हज करना है। बात समझ गए? तो ये चीज़ें, इसी से फिर हमारा ये माशर्ती बिगाड़ ठीक होगा। आज जो हमारी पूरी चीज़ें क्योस में, यानी वो तो मैं ना छेड़ूँ तो बात बेहतर है, हम इसी पे रहें तो अच्छा है। आज माँ बाप के लिए औलादें नासूर क्यों बनी हुई हैं? आज माँ बाप बच्चों की खुशी का जरिया क्यों नहीं बने? ये कमी की हमने। अगर 18 साल तक बच्चा बड़ा होने तक आप 2-3 बार उसको उम्रे पे ले जा चुके हो, हर साल नहीं चले 2-3 साल में एक दफ़ा, बचपन से लेके बच्चों को आज तक उम्रे पे जाते, बच्चे कभी ना बिगड़ते। बच्चे आज इस्लाम से क्यों दूर हैं? उन्होंने इस्लाम की इज्जत नहीं देखी। आज भी आप जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको लेकर जाए सबको, आप जिस दिन वहाँ मक्का में उतरेंगे, इतने मुसलमान, इतने हिजाबी, इतने दाढ़ियों वाले, इतने मर्दों में से बाहया लिबास पहनने ले देखेंगे, एकदम आपको एनर्जी मिलेगी। यहाँ हमने क्या देखे, वो डरे दुबके मुसलमान बेचारे, इधर से अपने आपको छुपाते हैं तो उधर से निकल आते हैं, उधर से, ये कोई इस्लाम है? ये तो हमारा शर्मिंदा मुसलमान है आज हम, वल्लाह ही बात बहुत कड़वी है। लेकिन ये वेस्ट में रहने वाले मुसलमान कोई दुनिया में ऐसे बहुत बड़े को रोब का जरिया नहीं बनते, वो तो खुद बेचारे महरूम है, कोई एक आधा हो भी गया तो अल्लाह उससे कोई काम ले लेगा, वरना हम जैसों से नहीं होगा। तो बच्चों को बार बार लेकर जाएं ऐसी जगहों पर, ठीक है? फिर आप देखिए दूसरी चीज़, रास्ते का अमन। अब ये कब है? अल्हम्दुलिल्लाह अमन है आज। ये कब की बातें थी? जब नबी सल्लम का दौर था। आप देखिए कि मक्का में मुसलमान जब रहे तब तक तो भी सारी शरीयत बन रही थी, मदीना से मुसलमान कई साल हज क्यों नहीं कर सके? 8 ज़िलहज को मक्का फतह होता है, रास्ता पूरा अमन हो गया, आपने 9 ज़िलहज को अपना हज कर लिया, ठीक है? और अल्लाह ना करे सऊदी अरब में कोई ऐसे फितने आए, ऐसी जंगें लगें कि आने वाले दौर में फिर मुश्किल हो जाएगा, और ये होगा जो हालात बनते जा रहे हैं। ये भी एक छोटी सी बात नोट कर लें, दिन ब दिन हज मुश्किल हो रहा है। आप देखिए सहूलतें दुनियावी ज़्यादा हो रही हैं, बट और कई एंगल से हज बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एज सुन एज इसको कर लिया जाए। फिर सफ़र के काबिले सेहत, यानी सेहत अच्छी हो, आप दूसरों पे बोझ ना हो। अच्छा अब देखिए इसमें फिर वही बात आती है, आप कहते हैं देखा मैं तो पहले ही कह रहा था, मर्द या औरतें जो भी। अच्छा अक्सर आप ये भी नोट करेंगे औरतों को ज़्यादा शौक होता है, मर्दों को कम होता है, क्योंकि हमारे मर्द अमूमन, अल्लाह हिदायत दे हम सबको, वो लिखने पढ़ने से दूर होते हैं। जुमे कभी खुतबा बेचारे मौलवी साहब अकेले ही दे के जब खड़े होने लगते हैं जमात के लिए तो सारे ब्रदर्स आ जाते हैं, क्या और नमाज पढ़े। लेकिन अदरवाइज ये है कि सफ़र वाली मुसीबतें मुश्किलें भी मर्दों ही में ज़्यादा आती हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, अब गौर से सुनिएगा, 60 साल उम्र हो गई, मान लिया सब सेहत ख़राब है, तो 60 साल तक हज पे फ़र्ज था। ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, बीमारी आ जाई है ना, पहले तो नहीं थी, अब आप माशाल्लाह पिछले 40-50 साल से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, माल भी आपके पास है, सफ़र भी, रास्ता भी पूरा मन है, आपकी सेहत ठीक थी, अब आपने नहीं किया, अब बिगड़े हुए, अब क्या किया जाए? सवाल समझे? जब सेहत अच्छी थी हज फ़र्ज़ था, नहीं किया, अब नहीं कर सकते, बिलफर्ज वाकई नहीं कर सकते। देखिए ईमान के साथ ताल्लुक है, करना चाहिए फिर भी। आज इतनी वहाँ सहूलतें हैं, आप जाकर देखेंगे कि वहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तक चला दी, पता ही नहीं लगता उम्र है, गाड़ी पे बैठ के एक दूसरा बंदा बैठ के आपके साथ मूव करता रहता है, आप एक कदम ज़मीन पे नहीं रखते, आपका तवाफ़ हो जाता है, आपकी सही हो जाती है। माजूरों के लिए ये सहूलतें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ियों में बिठा कर पीछे से जो मैन्युअली चलाते हैं लोग, वो भी सहूलत मौजूद है। कोशिश कीजिए अपने पाँव पे हज एक तवाफ़ ज़रूर करें। आप में से कुछ सिस्टर्स माशाल्लाह, हो सकता है उनको लगे कि हम नहीं चल सकते, पहला तवाफ़ या कम अज़ कम एक तवाफ़ और उमरा जो करना है शुरू वाला, वो अपने पाँव पाँव पे करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के रास्तों में भाग दौड़ की आदत पड़ेगी। आज मजमूई तौर पर उम्मत सुस्ती का शिकार है, अल्लाह के लिए निकलना है नहीं, घर से सुन लेंगे, अल्लाह के लिए कोई बात करने जाए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं जाने की, इधर से ही बात कर लेते हैं। ये मिजाज बनता जा रहा है हमारी उम्मत का। तो ये हज के लिए जो चलना, तवाफ और सही, ये आपको मुझे अल्लाह के रास्तों में भाग दौड़ सिखाएगा। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, ठीक है, कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपकी सफ़र सब ऐसा है तो नहीं, आप बिलफर्ज कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर हज बदल करवाना पड़ेगा। कोई फौत हो जाता है, हज नहीं किया हुआ, आप कहते हैं देखे ना अब्बा बेचारे बीमार थे, पर अब्बा कभी ठीक भी तो थे ना, तो फिर बच्चों को उनका हज करना पड़ेगा। हदीस में आता है कि जो मर जाए और उसके जिम्मे हज हो, तो उसके वारिस या वाली जो है वो उसका हज करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल ये तो अल्लाह की बात है। किसी की मैंने जो बात सुनी कभी, बहुत ही मेरे दिल पे उसका असर रहा। बहुत ही अच्छी साथी थी, तो वो अपने एक अंकल का बताती थी कि सारी ज़िंदगी जद्दा मेरे दीन से दूरी थी। क्या थी? मक्का नहीं जाते थे, उमरे के लिए नहीं गए कभी। किसी ने बहुत ही जब उनको कहा ऐसे कि जाना चाहिए आप करें, तो किसी के कहने पर, अच्छा तुम कहते हो चलता हूँ, और घर से निकले अभी एक पाँव बाहर है, वहीं अल्लाह के हुक्म से कोई तकलीफ हुई और गिरे और मर गए, नहीं जा सके। अल्लाह तौफीक छीन लेता है। तो इससे पहले कि हम जा ही ना सकें, चले जाए। एक वक्त होता है बंदा कहता मैंने नहीं जाना, एक वक्त आता अल्लाह कहता मैंने नहीं आने देना, बैठो घर। आप और मैं भी ऐसे ही करते हैं, हमें को बार बार बुलाए, बार बार बुलाए और हम ना जाएं, अगली दफ़ा कहेगा मैंने नहीं बुलाना आपको, आप बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं अपने आप को। तो हमेशा आजजी के साथ ये काम आसान हो जाते हैं। फिर इसी तरह चौथी शर्त क्या है? ज़ेरे किफ़ालत अहले याल के ज़रूरी खराजात के लिए हज से वापसी तक माल का मुयस्सर होना, यानी पीछे जो घर वाले हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए भी खर्च होना चाहिए पास, ताकि पीछे ऐसा ना हो कि वो भीख मांगते फिरें। यहाँ से आप दीन का हुसन देखिए, कितनी खूबसूरती है हमारे दीन में। अब यहाँ फिर मैं यही कहूँगी कि अब इसका ये नहीं मतलब कि उनकी लंबी लंबी शॉपिंगों की लिस्ट है, वो तो कभी नहीं ख़त्म होंगी। बेसिक्स, रोटी पानी कपड़ा घर मौजूद है, सहूलत की चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर इंसान जा सकता है। और ये असल में तो देखिए ना, आपके मेरे लिए सहूलत दी जा रही है ना, कि आप अच्छा इस तरह नहीं तो ऐसे कर लें, वैसे नहीं तो ऐसे। ये चार शर्तें तो सबके लिए थी। अब पांचवी जो औरतों के लिए स्पेशली है, अहले इल्म के सही कॉल के मुताबिक खातून पर फर्जियत हज के लिए एक मजीद बात क्या है कि सफ़र में हमराह जाने के लिए शौहर या महरम मुयस्सर हो, वरना इस पर हज फर्ज ना होगा। बड़ा मशहूर मसला है, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी अपने घर वालों के साथ जा रहे होंगे। कई खवातीन इस चीज़ का शौक रखती हैं कि हम हज या उमरे पे जाना चाहते हैं और हमारे साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं, तो आप उनसे कहिए कि अल्लाह ने फिर आपको मुकल्लफ भी नहीं किया। यदि ऐसी औरतें अल्लाह के हाल अल्हम्दुलिल्लाह माजूर हैं, अल्लाह उनसे नहीं पूछेगा कि आप हज पे क्यों नहीं गई, उम्रे पे क्यों नहीं गई, तो हज ना करके भी आपको अजर है, उम्रा ना करके भी अजर है। करना किसके लिए था? अल्लाह के लिए। अजर किसने देना? अल्लाह ने। तो फिर झूठे महरम बनाना, ये कर दें वो कर दें, जिसमें गुनाह का एहतमाल तो मौजूद है ना, तो बेहतर है कि इंसान हसरत में मर जाए। याद रखिए कि बाज़ दफ़ा कोई काम करके बंदा इतना अजर नहीं पाता जितना उस काम को ना करके पा लेता है, तड़पता है, तलब रखता है। और एक छोटी सी बात मैंने कल भी इशारतन कही थी कि ऐसी बहनें जो ये सोच के कि फलां ले जाता है, फलां ग्रुप में जाते हैं, मैं फिकी बात कर ही नहीं रही इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ती, वो फिर अपने महरमों को हमेशा के लिए फारिग कर देती हैं। लेकिन अब बीवी मजबूर करेगी, हर साल कहेगी जाते हैं, मियाँ का जहन कुछ बनता जाएगा, एक दिन कहेगा तुम्हारी खुशी के लिए जाता हूँ, बीवी को ले जाएगा साथ, दोनों का हज हो गया। और अल्लाह करेगा कि वहाँ जाकर उसके दिल में खुद ही नमाज रोज़े की मोहब्बत भी आएगी, बुराई भी छूटेगी। लेकिन बीवी करके आ गई खुद से या किसी और के साथ चली गई, तो फिर मियाँ अकेला कभी जाएगा या तो फिर बीवी भी दोबारा जाए। तो हमेशा अपने घर वालों को तावन अल बिर्री व तकवा की रोशनी में नेकियों पे रग़बत दिलानी चाहिए, बजाय इसके ये कि अच्छा मैं खुद चली जाती हूँ, आपके नहीं, मैंने आपके साथ ही जाना है, आपके बगैर नहीं जाऊँगी, ठीक है। तो पहली चीज़ समझ आ गई कि हज फ़र्ज़ किस पे है, सहूलत है कि नहीं है, कोई बोझ तो नहीं है, कोई डंडा तो नहीं है किसी के सर पे डाला हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी सहूलत देखिए कि ज़िंदगी में सिर्फ एक हज फ़र्ज़ है, सिर्फ एक हज फ़र्ज़ है। दोबारा आप जाते हैं, आपकी खुशी है, बार बार जाते हैं, अल्लाह आपको ले जाए, फ़र्ज़ एक ही है। ये भी तो कितनी सहूलत है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, आप नॉर्वे में रहते हैं, इस अच्छे खाते पीते खुशहाल मुल्क में भी कई लोग 2-3 साल तक बचत करते हैं, फिर हज के लिए जाते हैं। ऐसे ही है ना, थोड़ी रकम तो नहीं है, 50-60 हज़ार एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। अगर आप एक दफ़ा कर रहे हैं, और अगर फॉर एग्जांपल ये होता हर साल हज फर्ज है, तो आप और मैं सारा साल क्या करते हमारे मर्द? कमाते और पैसे जमा करते और हज कराते, मुमकिन था ना? नहीं किया। तो ये सहूलत है हमारे दीन में, अल्लाह ने हमें इसमें आसानी दी है। फिर तीसरी सहूलत देखिए, पैदल या सवारी पर हज करने का इख्तियार है। हज करने वाला अपनी हिम्मत और वसाइल के बकदर पैदल या सवार होकर जैसे चाहे हज करे, इस बारे में इस पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी पहले दौर के लोग हज पैदल करते थे, मक्का से आए, मदीना से आए, इधर से आए, ऊँट भी थे, घोड़े भी थे। बाज़ लोग क्या सोच लेते हैं, पैदल करेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा। इसका जवाब अगले हिस्से को साथ लेके देखिएगा। चौथी आसानी देखिएगा, हज और उमरा पैदल करने की नज़र मानने वालों के लिए आसानी। हज उमरा पैदल करने की नज़र मानने वाला जहाँ तक मुमकिन हो पैदल जाए, जहाँ इस्तेतात यानी ताकत ना हो वहाँ सवार हो जाए, और एक जानवर बतौर कफारा कुर्बानी करे। एक बकरी बतौर कफारा ज़िबह करने के लिए काफ़ी है, अलबत्ता मुस्तहब ऊँट ज़िबह करना। पहले दौर में लोग ऐसा करते थे, मन्नत मान ली पैदल जाऊंगा। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, हम कहते हैं चले यहाँ से सिटी पैदल जाते हैं, हम 1 किलोमीटर चल लेंगे, 2 चल लेंगे। अब 8-9 किलोमीटर तो हम नहीं चल सकते, अब क्या करें, बीच में बैठ जाएं, उठ जाएं। अगर किसी ने कोई ऐसी मन्नत मान ली है तो उसका तरीका क्या है, फिर चले, जितना चल चुका चला, उसके बाद जो सवारी मुयस्सर हो उस पर बैठ जाए और अपनी कसम का कफारा दे दे। ठीक है, तो ये फिदिया या दम देना क्या है, एक बकरी ज़िबा कर दे तो भी ठीक है, लेकिन अगर कर सके तो एक ऊँट को ज़िबा करे। लेकिन हम में से तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी मन्नत नहीं मानता, और ऐसी मन्नतें नहीं माननी चाहिए। अल्लाह आपकी मेरी मुशक्क़त से बेनियाज है। आप कहते हैं मैं पैदल चल के इधर आती हूँ मस्जिद में, आपकी खुशी है। आप कहते हैं गाड़ी में आती हूँ, आपकी खुशी है। आप गाड़ी में चलकर आए, रिलैक्स से आराम से बैठ के दर्द सुन रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल लगा, वो आपके हक में सदका है। आप पैदल चल के हे के कदम बेहतर तो है, लेकिन हो सकता है यहाँ आप थक के आए और अब सो जाए। तो जो काम भी करें शरह सदर के साथ करें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगली चीज़ क्या है कि वक्फ फी सबीलिल्लाह सवारी पर हज और उमरे की इजाज़त। ये बड़ा खूबसूरत सा इशू है। हज उमरे की गरज से जाने वाला अल्लाह ताला की राह में वक्फ शुदा सवारी पर सफ़र कर सकता है, क्योंकि हज और उमरा भी अल्लाह ताला की राहों में से एक है। बस आप देखिए कि पहले दौर में लोग अपने जानवरों को अल्लाह के नाम पर छोड़ देते थे। सूरह मायदा के बिल्कुल शुरू में इसका तذکرہ आता है कि मतलब वो जानवर जो अल्लाह ताला के रास्ते में छोड़ दे, हदयन कहते थे, हदिया दे दिया, तोहफा दे दिया। अब मदीना से निकले, अपनी बकरियों में से एक बकरी सोच ली, या कोई गाय बैल है, या कोई भी जानवर है कि इसको अल्लाह के नाम पे ज़िबा करूंगी। अब मदीना से जाना है मक्का, उस दौर में कोई ट्रांसपोर्ट तो नहीं थी ना कि गाड़ी में बिठा लिया, अब खुद भी जाना है तो उस जानवर को भी लेके जाना है, तो क्या करो, उसके ऊपर बैठ के सफ़र कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आपने एक गाड़ी अल्लाह के रास्ते में देनी है, अब वो गाड़ी आपने नियत कर ली कि ये मैंने अल्लाह के रास्ते में दी है, तो अब जिस जगह तक जाना है आप उस गाड़ी में बैठ के सफ़र कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। यानी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में पढ़कर दीन को मुश्किल नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए अगली चीज़ क्या है कि हज में रिज़्क़ के हलाल तलब करने की इजाज़त है। कैसे, हज में रिज़्क़ के हलाल के हसूल की खातिर तिजारत, मजदूरी, मुलाजमत और अपनी सवारी किराए पर देने की इजाज़त है, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि इससे हज के अमाल में खलल ना आए। अब आप इसको समझिए, चले हम तो बाहर से जाते हैं ना, हम तो यहाँ कुछ नहीं लेकर जाते, ताइफ से या रियाज से कोई फैमिली हज के लिए आती है, अब हज के लिए अपनी गाड़ी में आ गए, सिर्फ मिसाल से बात समझाना चाहती हूँ। अब वो गाड़ी उनके पास मौजूद है और आपको पता है कि हज में बहुत ज़्यादा रश होता है, सवारियों के लिए घंटों वेट करना पड़ता है, टैक्सी के लिए, बस के लिए। अब आपकी गाड़ी खड़ी, कोई कहता है मुझे यहाँ से हरम तक छोड़ते हो, आप कहते हैं कि ठीक है, बाकी भी 10 रियाल लेते हैं, मुझे दे दो मैं ले लूँ, कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। आप नॉर्वे से गए, आपको लगता है कि यहाँ मिसाल है कि नट्स बड़े अच्छे मिलते हैं, या यहाँ की खजूर बड़ी अच्छी मिलती है, या आपको सस्ती मिल रही है, आपकी दुकान पे रखी हुई थी खजूरें बहुत थी, यहाँ नहीं बिक रही, वहाँ बिक जाएंगी, आप अपने सामान के साथ ले जाएं, वहाँ जाके बेच दें, कोई हरज की बात नहीं। शर्त ये कि गालिब ये ना हो, दो चीज़ें हैं याद रखें, जा तिजारत की नीयत से रहे थे और हज करना नहीं, जा हज के लिए रहे हैं और नियत कर ली हज की, इसकी इजाज़त है। ये नहीं कि फिर वहाँ जाकर भी सिर्फ बहुत ही करते रहे, तो बहरहाल इसकी इजाज़त मौजूद है। कोई औरत है यहाँ से कुछ चीज़ें बनाकर हाथ से ले जाती हैं, मेहनत करके वहाँ जाके बेच लेती हैं कि चले सफ़र का खर्चा निकल आए, कोई हरज की बात नहीं। और याद रखें सब लोग हम जैसे नहीं हैं, कई गरीब गुरबा भी तो है ना, कई ऐसे भी होंगे बेचारे जो सिर्फ टिकट के पैसे जमा कर लेते हैं, बाकी वो कहते हैं अच्छा वहाँ जाकर कुछ करते हैं, हाथ पाँव मारेंगे, कुछ खाने पीने का खर्चा करना है, तो वो इंशाल्लाह ऐसा कर सकते हैं। ये भी एक आसानी है, अल्लाह के हुक्म से, कुरान में इसकी आयत भी मौजूद है। फिर इसी तरह उम्र से मुतल्लिक आसानियाँ, उम्र की सारा साल इजाज़त होना, देखिए हज तो एक ही मौका है ना, अब कई लोग हज पे इस साल क्यों नहीं जा रहे कि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये इशू है। कई ऐसे हैं वो कहेंगे हमारे शोहर को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उम्रे के लिए सारा साल खाली है। ये भी तो अल्लाह की रहमत है, आप सिर्फ ये हज के चंद दिन छोड़ दें, उसके अलावा और उम्रा आप जब भी करना चाहें। शरण तो हज के दिनों में भी उम्रा करने में कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इस जो सऊदी गवर्नमेंट है वो अपनी सहूलत और चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए लोगों को वीज़े नहीं देती। अच्छी बात है, क्यों नहीं देती कि हज के लिए ही इतने लोग आए हैं, उनको तो सिर्फ हज जिलहज में ही करना है, लेकिन उम्रे वाले तो फिर कभी भी आते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि रमज़ान के फौरन बाद से वीज़े बंद हो जाते हैं, इसी तरह हज के तकरीबन एक महीना डेढ़ तक, मुहर्रम तक फिर वीज़े नहीं मिलते। लेकिन बहरहाल आप कर सकते हैं करना चाहें तो। सारे साल में उम्रे की इजाज़त है, बाज़ उलमा के नज़दीक 5 दिनों में उम्रा मकरूह है। वो कौन सा होगा जिसमें हाजी जो है वो मिना और मुजदलफा में जाते हैं, यानी 5 दिन, यौम अरफा 9 जिलहज, यौम नहर 10 जिलहज, और 3 अय्याम तशरीक यानी 11, 12 और 13 दिन है। बस दीगर उलमा की राय में हज करने वालों के अलावा दूसरे लोगों के लिए इन दिनों में भी उम्रा करना दुरुस्त है। अलबत्ता हुज्जाज आमाल ले हज मुकम्मल करने से बेशतर ना उम्रे का एहराम बांधे और ना ही उम्रा करें, यही राय दुरुस्त मालूम होती है। ठीक है, यानी वही बात समझ आ गई आपको कि करना चाहे कोई कर सकता है, लेकिन हज के लिए गए तो फिर बार बार उम्रा नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह सफरे हज में उम्रा करना, जा हम हज के लिए रहे हैं, 3 तरह के उम्र हज हैं। हज अफराद है, सिर्फ आप हज करेंगे, उम्रा नहीं करते, वो लोकल लोग करते हैं वहाँ के। दूसरा हज किरान जो नबी सल्लम ने किया, बड़ा मुश्किल है। आप अगर यहाँ से निकलते हैं मंडे को तो आपको या आज से लेकर ईद के दिन तक एहराम की हालत में रहना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल चीज़ है। अल्लाह ने एहसान कर दिया, हज तमत्तो करेंगे कि आप जाकर उम्रा करेंगे, एहराम की हालत में मक्का में दाखिल होंगे, उम्रे के बाद आप एहराम खोल देंगे। बिल्कुल आप एक आम इंसान की तरह खा सकते, पी सकते, बोल सकते, शौहर बीवी हैं साथ सो सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बाज़ लोगों ने इतना हज को मुश्किल कर दिया, ये सिर्फ बात इसलिए बता रही हूँ कि शर्म में कोई शर्म की बात नहीं है। बाज़ लोग हज पे शौहर बीवी साथ जाते हैं लेकिन साथ नहीं सोते, या कोई किसी किस्म की अगर ख्वाहिश भी हो पूरी नहीं करते, कहते नहीं इसमें गुनाह होता है, कोई गुनाह नहीं। और रह जाते आप अपने ऊपर ये पाबंदियाँ लगा लें, इसकी आपके पास हुज्जत होनी चाहिए। हाँ, एहराम की हालत में मना है, उसमें तो रफस भी मना है और उसमें जिदाल भी मना है, लेकिन जूं ही आप एहराम से निकल गए, शुरू का 1 दिन और 5 दिन, उसके अलावा पूरा महीना सवाब बिल्कुल आम दिनों का है, और आप इसको गुनाह नहीं समझें, ये तो सवाब का काम है। अगर आप एक जायज़ हलाल काम करते हैं तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। ठीक है।